Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. आप लोग सब इधर आ जाओ बेटा इधर कम मेरे ही कम ये घंटी बज गई प्रसाद की भगवान को भोग लग रहा है रेडी हो जाओ ये काय के लिए सफेद विजय कोई बैठे नहीं इसलिए अरे कृष्णा सो Malti Madhvi Devi Mataji aur Satyahari Nam Das Prabhuji ke Nivas Sthan pe inhone Srimad Bhagavat Mahapran ka Nirmal Paath pura kiya hai uske uplaksh mein aaj hum Bhagavat ki mehma aur Bhagavat ke pathan paathan श्रवण वर्णन के महत्व को उसके महत्व को इम्पोर्टेंस को और जीवन में भागवत क्या परिवर्तन लाती है उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए सत्संग करेंगे जो भागवत शुरू होती है हमारे पास जो श्रीमद् भागवत महापुराण का शुरुआत होती है वो होती है नैमिषारण्य में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है चक्कर तीर्थ उसको कहते हैं जहां भगवान का सुदर्शन चक्कर धरती में चला गया ये जगह लखनऊ और दिल्ली के बीच में ऑलमोस्ट मिडिल में एक सीता रोड आता है सीता रोड से 10-15 किलोमीटर अंदर में पड़ता है उसका नाम नैमिषारण्य है कभी जाके उस स्थान को देखा जा सकता है तो यहां एक भागवत की कथा कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए की जा रही थी जो कथा का उद्देश्य था दी पर्पस था जो कथा का कि कलयुग जो अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है उसको रोका कैसे जाए और ये शुभ कामना करके 88,000 ऋषि भृगुवंशी बैठे थे सौनक ऋषि के नेतृत्व में और ये सारे जो है निवृत्ति मार्ग के ऋषि थे सब बहुत साधु बने ब्रह्मचारी थे और उनका एक ही उद्देश्य था कि कलयुग के प्रभाव को रोका जाए तो यज्ञ तो करते थे दिन में शाम को जो टाइम बचता था तब वो कथा सुनते थे तो इस बार कथा सुनाने के लिए भगवान बलराम जी जो आदि गुरु है उसके कृपा पात्र वन हु इज ब्लेस्ड बाय बलराम डायरेक्टली एंड जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ सुखदेव गोस्वामी दी चीफ स्पीकर जो मैं मुख्य स्पीकर है भागवत का वो उगर सर्वा सूता आया इसके पिता का नाम है रोम हर्षण सूता वो व्यास देव का शिष्य है लेकिन उसका तो प्राण निकल गया बलराम जी के द्वारा तो बलराम जी ने सूता को विशेष रूप से भागवत का आचार्य बनाया तो ये परंपरा भागवत की बलराम जी के कृपा से आ रही है सुखदेव के द्वारा तो उस भागवत को सुनने के बाद ऋषियों ने यज्ञ करना ही बंद कर दिया बोला यज्ञ का प्रभाव कलयुग में नहीं है भागवत कथा ही कलयुग में सर्वसार है तो वो ऋषि स्वयं कहने लगे कि ये यज्ञ करते करते सारे चारों ओर दुहा तो हो गया लेकिन हृदय पवित्र नहीं हो रहा है तो आप भागवत का अमृत पिलाइए ये पहले स्कंद का सार है तो वहां पूछा जाता है ये प्रश्न कि ये भागवत कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, किसकी प्रेरणा से लिखी गई, क्यों लिखी गई। तो भागवत क्यों लिखी गई, व्हाई इट वाज कंपाइल्ड, कहाँ लिखी गई, वेयर इट वाज कंपाइल्ड, ऑन हूज इंस्ट्रक्शन, किसकी प्रेरणा से, हु इंस्पायर्ड समबडी टू राइट भागवतम, हु रोट भागवतम, ये प्रश्न पूछा जाता है पहले स्कंद में ही। तो कहते हैं भागवत की रचना व्यास देव ने की, जब उन्होंने वेद सारे वेदों का विस्तार कर लिया, एक को चार में, उपनिषद, सत्रह पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत सब लिख लिया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो फिर उस वक्त सरस्वती के तट पे नारद जी ने उनको प्रेरणा दी। तो नारद जी की प्रेरणा से ये भागवत कहाँ लिखी, किसने लिखी, व्यास देव ने लिखी, कहाँ लिखी, बोला बद्रिक आश्रम में लिखी। बद्रिक आश्रम में भागवत का अवतार हुआ। ये जो भागवत हमारे पास अभी जिसका हम पठन पाठन करते हैं, वहाँ व्यास देव का आश्रम है। आप में से कोई बद्रिक आश्रम गया, नहीं तो अगली बार चलिए, आप गई बेटी, हाँ जो, तो वहाँ व्यास देव का एक व्यास केव है, व्यास देव की गुफा है और सरस्वती नदी वहीं बहती है, उसके तट के ऊपर व्यास देव आए थे। बहुत सुंदर दर्शनीय एक शांतिपूर्वक स्थान है, बहुत अच्छा सरस्वती का तट, वो भारत का लास्ट विलेज है माना, 6 महीने केवल खुलता है, 6 महीने बंद रहता है। तो वहां लिखा है बद्री खंड मंडिते ऋषि सत्र वर्धनम, वहां बहुत से ऋषि मुनि आते थे और सदा हरि कथा होती रहती थी, वैसा स्थान था। मध्वाचार्य 2 बार वहां पैदल चल के गए और व्यासदेव का दर्शन किया, उनकी प्रेरणा के बाद मध्वाचार्य हैज कंपाइल्ड हिज कमेंट्रीज, मध्वाचार्य चले गए। श्री वल्लभ आचार्य वहां चले गए पैदल ढूंढते ढूंढते कि ये जगह कहाँ है, 500 साल पहले, ये वहां ट्रावल दी वे 500 ईयर बैक टू रीच देयर। तो ये अभी तो बहुत आसान है, गाड़ी में चढ़ो सीधे बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जमाने में पैदल ये लोग चल के गए। तो लिखी कहाँ गई, बद्री का आश्रम में लिखी गई, व्यास देव के द्वारा लिखी गई, नारद जी की प्रेरणा से लिखी गई। और इसका लाभ क्या है, केवल श्रवण से कृष्ण भक्ति तत्काल हृदय में प्रकट होती है। कृष्ण परम पुरुषे भगवती उपजायते, केवल श्रवण मात्र से, केवल सुनने से, पठन पाठन से बहुत आसानी से कृष्ण भक्ति का हृदय में जागृत हो जाती है। कभी भागवत पढ़ना शुरू करेंगे, आप पढ़ेंगे तो बंद करने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप इफ यू रियली स्टार्ट इट देन यू विल नेवर वांट टू स्टॉप इट, तो चलता रहना चाहिए ऐसा लगेगा। तो ये भागवत के उत्तर ने, और 3 श्लोक पहले भागवत के 1, 2, 3, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादिअस्य इतरतस अनव्याद, ये जो श्लोक हैं, जिसको कहते हैं मंगलाचरण, ये व्यास देव ने मंगलाचरण किया है शास्त्र लिखने से पहले। मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण के 3 उद्देश्य होते हैं, इष्ट प्रार्थना टू ऑफर ओबिसेंस टू द प्रिजाइडिंग डीटी, जो हमारा इष्ट देव है उसको प्रार्थना करनी है। क्यों करनी है प्रार्थना, द वर्क शुड बी कंप्लीटेड विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, निर्विघ्न कार्य की पूर्ण करने के लिए इष्ट प्रार्थना होती है। नंबर 2 जो उद्देश्य होता है मंगलाचरण का, वो होता है विषय वस्तु, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ऑथर ही बता सकता है, लिखने वाला ही बता सकता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। जैसे वाल्मीकि रामायण से, वाल्मीकि से पूछा जाए कि आप क्यों लिख रहे हैं, बोला मैं सीता की महिमा को दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। वो स्वयं ऐसे कहते हैं कि सीता मेरे आश्रम में रही और उसके मैंने जो चरित्र को देखा उसको मैं विस्तार से लिखने के लिए लिख रहा हूँ, वो ऐसे कहता है। और कोई कुछ भी कहे रामायण जो रामायण है वो सिर्फ वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण, उसका नाम रामायण है, बाकी रामचरित मानस है, आध्यात्मिक रामायण। रामायण शब्द जो है, राम अयनम यस्य रामायण, जिसमें राम रहते हैं उसको रामायण कहते हैं, राम जी का घर। रामायण का मतलब राम जी का घर, जिसमें राम रहते हैं। ऐसे भागवत जो भगवान के समान है, जिसमें भगवान रहते हैं, भागवत में भगवान रहते हैं। और ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण ने सारे अपने ही एसोसिएट्स को कुसुम सरोवर के पास, जब उद्धव जी भागवत कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सबने कहा कि अब भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने कहा वर मांग लो। बोला हम सबको ये वर हम मांगते हैं कि जहाँ भागवत का पाठ हो वहाँ आप प्रकट हो जाया करो, अथवा आप भागवत में निवास करो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, अब परविष्टो अहम भागवत अरण्यम, अब मैं भागवत रूपी अमृत सागर में प्रवेश करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत में विराजते हैं, अकेले भगवान कभी नहीं रहते हैं, भगवान हमेशा भक्तों के संग रहते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त, वो भागवत पुराण भगवान और भगवान के भक्तों का पुराण है। तो दूसरा विषय होता है भागवत का, दूसरा मंगलाचरण का उद्देश्य है विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर। तीसरा होता है आशीर्वाद, कि कोई इसको पढ़ेगा सुनेगा तो उसको क्या फल मिलेगा, उसको कहते हैं आशीर्वाद। तो मंगलाचरण त्रिविध, ये चैतन्य चैतन्य ने लिखा है कि मंगलाचरण त्रिविध त्रिप्रकार तीन विषय, इष्ट प्रार्थना विषय वस्तु निर्देश आशीर्वाद। तो पहले प्रार्थना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते सत्यम परम धीमहि, ये इष्ट को प्रार्थना है। सत्यम परम, जो परम सत्य है, धी मतलब बुद्धि, मही मतलब हम सब की बुद्धि, परम सत्य में लगे, ये गायत्री मंत्र का जो एक भाग है, जो इस मंत्र, इसलिए कहते पहले मंत्र में गायत्री भी है, वेदांत सूत्र भी है, जन्मादि अर्थ वेदांत सूत्र है, बस अर्थ नहीं है, एक आगे अर्थ नहीं लिखा है, अर्थ लिखे हैं तो आप सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है, फिर ये वेद हो जाएगा और इसका पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को हो जाएगा और गुरु के आश्रम में हो जाएगा। अर्थ को निकाल दिया, जन्मादि अर्थ लिखा तो इसको कोई भी पढ़ सकता है। गायत्री मंत्र इसमें है और जो सब जप सकते हैं, धीमहि। तो फिर सत्य, ये सत्य कौन है यहाँ, कृष्ण तो लिखा नहीं, सत्यम परम धीमहि लिख दिया। तो फिर दशम स्कंद में देवताओं की जहाँ प्रार्थना है कृष्ण को, अभी कृष्ण तो कंस के काल कोठड़ी के अंदर, देवकी के उदर के अंदर भगवान श्री कृष्ण है, तब ब्रह्मा और शंकर जी आदि प्रार्थना करते कहते हैं सत्यम, आप परम सत्य हो, सत्यम परम, तो आप ही परम सत्य हो, आपके वचन सत्य हैं, आप सत्य की स्थापना करते हो। तो वहां से दशम स्कंद से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य साधुओं ने ये बताया है कि ये परम सत्य श्री कृष्ण को संबोधन है। जैसे सच्चिदानंद ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद, तो वही परम सत्य है ईश्वर, ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधन है। लेकिन क्योंकि वहाँ व्यास देव के पास भी बहुत प्रकार के ऋषि आते थे और सुखदेव जी भी कथा जब कर रहे थे तो बहुत से ऋषि थे, जिसमें से कुछ ज्ञानी थे, कुछ भक्त थे, कुछ योगी थे, तो एक ऐसा सामान्य शब्द जो सबको सुकृत हो ऐसे बोला गया है, सत्यम परम धीमहि, तो उसके अंदर कोई संप्रदायवाद नहीं आ सकता है कि हमारा है कि तुम्हारा है, एक ऐसे इस प्रकार से उसको लिखा गया है। और आज विषय वस्तु क्या है, शिवदम, वस्तु शिवदम, इस भागवतम मंगलकारी है, शिवदम का मतलब कल्याणकारी, ये सबका मंगल करने वाली इसमें वस्तु है। तापत्रय उन्मूलनम, जो संसार के अंदर तीन प्रकार के कष्ट प्राणी भोग रहा है, देवताओं की ओर से, दूसरे प्राणियों की ओर से, अपने मन और शरीर से उन सब तापों को निवारण करने वाली है, मूल से उखाड़ने वाली है, ये इसका आशीर्वाद है। और इसको इसको मीठा कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, और ये वेद कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और ये रसमय है क्योंकि ये फल ऊपर से गिरा नहीं है, ये परंपरागत नीचे एक ने दूसरे के हाथ में दिया, ऐसे नीचे उतर के आया है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव से सूत गोस्वामी ने सुना, ऐसे ये कथा परंपरा से आ रही है। फिर पहले स्कंद में विशेष रूप से सुनने और सुनाने वालों का वर्णन है, और सुनने वाला जो है वो परीक्षित है, जिसने केवल भागवत सुनने से भगवान की प्राप्ति की, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, काल के ऊपर विजय प्राप्त की। और सुनाने वालों में सर्वश्रेष्ठ वक्ता सुखदेव गोस्वामी है, जो पहले ही ज्ञान की चोटी के ऊपर थी, वो दी क्लाइमेक्स ज्ञान मार्ग, वो ब्रह्म ज्ञान में पहले स्थित थे, निवृत्त पहले ही निवृत्ति धर्म में ब्रह्मानंद में रहते थे, उस सब को छोड़कर कृष्ण लीला में आकर्षित हो गया। ही वॉज टू मच अट्रैक्टेड बाय फर्स्ट टाइम ऑफ कृष्ण, और कृष्ण लीला ने उनको अपनी ओर खींच लिया। तो जो पहले से ही परफेक्शन पे पहुंचा था उसने भागवत को श्रवण किया है, तो उसके मुख से भागवत बहुत मीठा होके निकला है। कि सुख वैसे तोते को कहते हैं, सुख तोते को कहते हैं, एक दृष्टि से तो कातिया है, कुछ शास्त्र है उसका नाम अभी जबान पे नहीं आ रहा है, उसमें तो ऐसे लिखा है कि एक स्थान है तो सभी जानते हैं भारत में, अमरनाथ। अमर का मतलब क्या है? इटरनल, जवाना है। तो जहाँ जो चीज किसी को अमर बना दे, तो भगवान शंकर ने वहां भागवत की कथा सुनाई पार्वती को। पार्वती अमर होना चाहती थी। एक बार पार्वती के पास नारद जी आके कहने लगे, आपसे शंकर बहुत प्रेम करते हैं। बोला हाँ, प्राणनाथ हैं। बोला फिर उसके गले में इतनी सारी खोपड़ियां किसकी डाली हुई हैं? बता दो। वो सब सुंदर स्त्रियों की खोपड़ियां हैं। पूछना वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसको आप जिद करके जरूर उसका पूछना, और जब आपको उत्तर देंगे तो बोलना मुझे अमर बना दो। पार्वती ने जिद किया तो शंकर जी ने कहा, भाई आप ये क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्या करना है इससे? बोला नहीं, मेरे को बताओ। बोला तो नारद मिल गया कि आप ऐसा, तो कोई प्रश्न पूछता है तो कोई नारद आया होगा। तो बोला ये बात नहीं है, मुझे बताओ। बोला तो फिर ये तुम्हारी खोपड़ियां हैं सब, तुम 51 बार मेरी पत्नी हुई, फिर तुमने शरीर त्याग दिया, सबको मैंने रखा, ये 52 बार तुम्हारा जन्म हुआ है। बोला फिर मुझे अमर बनाओ, अब मैं दोबारा खोपड़ी नहीं लटकाऊंगी आपके गले में। तो क्या फिर चलो अमरनाथ। तो फिर गए वहां, तो उधर वहां शंकर जी ने तांडव नृत्य किया ताकि कोई भी वहां प्राणी हो तो सब चला जाए, क्योंकि कोई भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। शंकर का कहने का तात्पर्य है कि कोई भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। जब वो सब तांडव समाप्त हुआ, भागवत कथा करना शुरू की, तो पार्वती हाँ हाँ कर रही थी, आधे में पार्वती समाधि में चली गई, और एक अंडे में अंडा पड़ा था, फूट गया, उसमें से एक तोता निकला और वो हाँ हाँ करने लगा। कथा चलती रही, वो हाँ हाँ करता रहा। और शंकर जी ने आंख खोले, देखी तो पार्वती तो सोई हुई है समाधि में, और ये तोता हाँ हाँ कर रहा। तो तोते ने भागवत कैसे सुन ली? उसको क्रोध आ गया कि ये तो पशु, ये तो पक्षी ने कैसे सुन ली? तो वो उठा के त्रिनंद उसके पीछे भागा, और वो तोता फिर व्यासदेव की पत्नी का आके शरण लिया, और वहां से सुखदेव के रूप में प्रकट हुआ। तो ये भागवत एक दृष्टि से शंकर जी से ये इसका एक उल्लेख कहीं शास्त्रों में ऐसे आता है। तो सुखदेव जी विशेष रूप से भागवत के अधिकारी हैं, व्यासदेव से सीखा है, शंकर जी से सुना है, और ये सुख का मतलब तोता है, ये तोता राधा रानी का तोता है असल में, और ये हमेशा राधा रानी को कृष्ण की महिमा सुनाता रहता। इसलिए कभी एक प्रश्न उठाते हैं कि इतनी सारी भागवत आपकी मान पुराण है, इसमें राधा रानी का तो नाम कहीं है नहीं। आराधिता करके एक बार नाम लिया है, गोपी में आराधिता, बस इतना ही नाम लिया है। एक तीसरे स्कंद में भी थोड़ा सा संकेत है, लेकिन जो समझते हैं वो इसका अर्थ निकालते हैं। तब उसका कारण ये बताते हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा नाम का उच्चारण कर ले तो उसकी स्वामिनी है वो तो समाधि में चला जाए, और वो तो समाधि में तो 6 महीने उसके आनंद में चला जाए तो कथा 7 दिन में कैसे पूरी हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सावधानी से राधा रानी के नाम को गोपी, मुख्य गोपी, आराधिता ऐसे करके लिखा है। तो अपने आध्यात्मिक रूप से सुखदेव गोस्वामी गोलोक में राधा रानी को कृष्ण की महिमा सुनाते हैं। और एक तोता है, एक सुख और सारी, सुख कहते हैं मेल तोते को और सारी कहते हैं फीमेल को, वो सारी कृष्ण के पास रहती है, वो राजा रानी की महिमा सुनाती रहती है। ये दोनों सुख और सारी भगवान श्री कृष्ण और राधा के नित्य लीला में उनका उठाते हैं, गाते हैं, सब ये उनका काम है। तो दूसरे स्कंद में फिर क्या साधन है भगवान को प्राप्त करने का, तो श्रवण ही भगवान को प्राप्त करने का साधन। श्रवण से ठीक तरह से सुनाने वाला कोई मिले तो केवल भागवत सुनने से भगवान हृदय में आके हृदय को पवित्र कर देते हैं, और भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो फिर आदमी कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ता। श्रवण ही उत्तम साधन है, और ये श्रवण ब्रह्मा जी ने किया भगवान से 4 श्लोकों के रूप में, इसका वर्णन है उसमें। इसके बाद तीसरे स्कंद में, उसके बाद सृष्टि, इसके बाद 10 भागवत के विषयों का वर्णन है कि भागवत में क्या सब्जेक्ट मैटर है। भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि कैसे होती है, ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि कहाँ होती है, वो ज्योग्राफी उसकी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, भगवान सृष्टि करते हैं तो उसका रक्षण पोषण कैसे करते हैं, फिर मैनेजमेंट कैसे चलता है सृष्टि का, मनवंतर का वर्णन है। फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार के वाई देयर इज अ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द लिविंग एंटिटी, ये तीनों गुणों के प्रभाव से इतने सारे वेराइटीज दुनिया के अंदर वेराइटी क्यों है, अपने कर्मों की वासनाओं के कारण है। और फिर भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, ईशानु कथा। फिर मुक्ति किसको कहते हैं, अन्य स्वरूप को छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। सामान्य मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्ति, ये तो सामान्य मुक्ति कहते हैं, जो दुख से मुक्त हो जाए उसको मुक्ति कहते हैं। असली मुक्ति का अर्थ है अन्य स्वरूप, जो दूसरी हमारी आइडेंटिफिकेशन है उसको छोड़कर गिव अप दी अदर आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टेब्लिशिंग इन ओन स्वरूप, इन ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, अपने ही स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। तो जब हम अपने भगवान की सेवा के भाव में स्थित हो जाएं तो वो मुक्ति कहलाती है। जीवन मुक्त समुच्चयते, रूप गोस्वामी कहते हैं वो जीवन मुक्त है, जीते जी वो मुक्त है, अन्य अभिलाष शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है उसको, तो वो जीवन मुक्त है। तो मुक्ति का मतलब भगवान की सेवा में लगना, असल में हमारा स्वरूप भगवान की सेवा है, ये मुक्ति का परिभाषा है। तो मुक्ति का पूरा इस 11वां स्कंद में मुक्ति का बहुत विस्तार से भगवान स्वयं ने वर्णन किया है उद्धव को, बहुत बड़ा विशाल 24 अध्यायों का ये उद्धव गीता है। फिर 12वें अध्याय में निरोध कहते हैं, निरोध का मतलब सब कुछ भूल जाए, केवल भगवान में तलीन हो जाए आदमी, कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन, और कुछ याद नहीं रहे, तलीनता ऐसी हो जाए, उसको निरोध कहते हैं। तो उस 13 अध्यायों का ये छोटा 12वां स्कंद है, इसमें कलयुग में कौन कौन से राजा, कहाँ कलयुग में वो चंद्रगुप्त मौर्य तक राजाओं का वर्णन है कि इतने सारे राजा आएंगे, उसके बाद मलेच्छों का राज हो जाएगा, फिर कहाँ कहाँ से लोग आ जाएंगे, धर्म वैदिक धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, और भूमि तब भूमि गीत में बताती है भूमि के कलयुग ऐसा दुर्प्रभाव कलयुग का हो जाएगा कि चारों ओर, कलयुग का बहुत लंबा वर्णन किया हुआ है कि कलयुग में क्या क्या होगा। सारा ही कलयुग का वर्णन 12वें स्कंध में, तो परीक्षित महाराज को बहुत कलयुग का वर्णन सुन के दुखी हो गए, कहने लगे तो ये प्रजा तो कलयुग से पीड़ित हो जाएगी, तो इनका उद्धार कैसे होना, केन उपाय है ना, कौन सा उपाय है, व्हाट इज द मीन्स, क्या उपाय है कलयुग के लोगों की पीड़ा से बचाने का। तब सुखदेव महाराज ने ये विशेष श्लोक कहा जो हमेशा प्रचार में हम कहते हैं कि कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत अस्ति एको महागुण। तो कलयुग को दोषों का सागर है, कलेर दोषे निधे राजन, कलेर मतलब कली, दोषे मतलब दोष, अवगुण फॉल्ट, और निधि का मतलब समुद्र। कलयुग दोषों का समुद्र है, तो कैसे आदमी बच सकता है, चारों ओर दोष ही दोष है जहाँ देखो। तो अस्ति एको एक ही महागुण है कलयुग में, और महागुण क्या है, कीर्तन कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया जाए। कीर्तन का मतलब सब मिलकर भगवान के नाम का गुणगान किया जाए। वैसे भागवत को पढ़ना भी कीर्तन कहलाता है, भागवत को सुनना भी कीर्तन कहलाता है। भगवत गीता और भागवत को पढ़े या जप करें वो भी कीर्तन है, ये भी कीर्तन है, इसको शास्त्र कीर्तन कहते हैं, ये शास्त्र का कीर्तन है। भागवत पढ़ना भी कीर्तन है, और विशेष रूप से इस कीर्तन की परिभाषा लास्ट श्लोक में प्रभुपाद ने, ये भी कीर्तन है। जो समय भगवान की एक कथा सुनी जाए तो वो कीर्तन श्रवण कीर्तन में आ जाता है। कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संगः, मुक्त संग, संग का मतलब संसार का संग, संसार का संग का मतलब बंधन, उनसे मुक्त कर देगा। परम ब्रजेत, फिर परम पद की प्राप्ति कराएगा। तो केवल कृष्ण कीर्तन, और ये कहने के बाद सुखदेव महाराज तो चले जाते हैं परीक्षित को कह के कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तक्षक आए या कोई और कैसा भी मृत्यु कोई भी रूप धारण करके आए, आप अपने स्वरूप में स्थित रहिए। और परीक्षित ने कहा अब मुझे कोई चिंता नहीं है महाराज, मैं आपके ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, अब मैं श्री कृष्ण के चिंतन में रहूंगा, ये शरीर से मैं पहले ही अपने आप को ऊपर उठा लेता। सुखदेव चले गए। उसके बाद सौनक ऋषि पूछते हैं उसके बाद कौन सी पुराण है, किसने लिखी, पुराण का कौन आचार्य है, तो सारे उसका लंबा चौड़ा वर्णन है वेदों का पुराणों का, और फिर थोड़ा सा प्रलय का वर्णन है जहाँ नरनारायण ऋषि को मार्कंडेय ऋषि, नरनारायण भगवान से मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं प्रलय किसको कहते हैं, तो उस प्रलय का दर्शन है कि प्रलय क्या होती है। और अंत के तीन श्लोक, अंत के एक श्लोक में कहते हैं कि जैसे सारी नदियों में गंगा परम पति तपावनी मानी जाती है, गणा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो, ऐसे भगवान जैसे कितने भी देवों के नाम है लेकिन अच्युत भगवान उनमें आराध्य है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे जितने भगवान विष्णु के उपासक है उनमें भगवान भोलेनाथ सबसे महान है, पुराणा नाम यथा यह पुराणों में ऐसे भागवत पुराणों का तिलक है। तो एक्सक्लूसिवली सब में एक कौन टॉप मोस्ट है, नदियों में गंगा, देवों में अच्युत, वैष्णव में शंकर, और पुराणों में भागवत। और फिर प्रार्थना है कि भवे भवे, कहीं भी हमारा जन्म हो लेकिन भगवान आपके चरणों की प्राप्ति हो, आपके भक्तों का संग हो, ये हमारे ऊपर कृपा करें। और फिर ये है लास्ट वर्ष भागवत की अंतिम श्लोक है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुख शमनम नमामि हरिं परम। ये पूर्ण आहुति का श्लोक है भागवत की। नाम संकीर्तन यस्य, जिस भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए, सर्व पाप प्रणाशनम, जितने भी जीवन में एक में नहीं कई जन्मों में पाप किए हों, प्रणाशनम नाशनम नहीं प्रणाशनम प्रकृष्टेन रूपेण नाशनम। प्रकृष्टेन रूपने का मतलब है पूर्ण रूप से, कोई उसमें ट्रेस भी नहीं बचेगी, लेस भी नहीं बचेगा, पूरे के पूरे पाप नाश हो जाते हैं नाम संकीर्तन से। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तो वही पाप का फल दुख होता है, पाप करेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख शमनम कैसे होगा, दुख का नाश कैसे होगा, प्रणामो, भगवान को प्रणाम करने से। तो भगवान को प्रणाम करने से, ये वही बात है जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, और यहाँ कहते हैं प्रणाम करने से दुख नाश होते हैं, तो वहाँ भी प्रणाम करेंगे तो दुख नाश होंगे, और वहाँ भी कहते हैं मेरी पूजा करो, और पूजा का साधन कलयुग में संकीर्तन भगवान की पूजा का साधन। भगवान की पूजा अर्चा पूजा करना बहुत मुश्किल है। वो कुंभ मेला में माता जमुना भगवान की आरती के लिए माचिस की तीली जलाए 71 में, और इतनी तूफान जैसी हवा चल रही थी तेज, 10-20 आधा माचिस पूरा हुआ आरती जली नहीं, प्रभुपाद बैठे थे, बोला कलयुग में अर्चा विग्रह नहीं संकीर्तन धर्म है, छोड़ो इसको संकीर्तन करो, इट वोंट वर्क हियर, ये कलयुग है इसमें अर्चा विग्रह, वैसे अर्चा विग्रह की शुद्ध शुद्ध सामग्री से पूजा होनी चाहिए, शुद्ध सामग्री है कहाँ, शुद्ध कहाँ, घी भी शुद्ध नहीं है, जो भी है वो तो सही काम, हम हमारी अपनी शुद्धि के लिए पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा का जो विधि विधान है वो पालन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कलयुग में भगवान का जो पूजा का मार्ग है वो संकीर्तन है। तो ये दो चीजों का भागवत यहाँ समाप्ति दो चीजों से होती है कि भगवान का संकीर्तन और भगवान को प्रणाम, प्रणामो प्रणाम। एक प्रणाम होता है भगवान को हाथ जोड़ने का, एक प्रणाम होता है सिर झुकाने का, एक प्रणाम होता है भगवान के सामने पंचांग प्रणाम करने का, जो स्त्री के लिए पंचांग प्रणाम का विधान है, पुरुष के लिए साष्टांग प्रणाम का विधान है। पांच अंग शरीर के धरती को लगे हैं, भगवान को प्रणाम करते समय माथा लगेगा, घुटने लगेंगे और हाथ लगेंगे, तो इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। तो ये प्रणाम करने से सारे दुख नाश हो जाते हैं। त्रिलोचन भक्त एक हुए हैं, इतिहास में एक भक्त हुए हैं त्रिलोचन, मेरे को उसका नाम याद आता है। एक संत कहीं रास्ते में बैठा था भगवान के ध्यान में, आगे अर्थी जा रही थी, मरा हुआ कोई उठा के जा रहे थे शमशान में, ये रोती हुई स्त्री रास्ते से जा रही थी, उसकी पत्नी थी, वो महात्मा जो बैठा हुआ था उसको प्रणाम कर दिया, तो महात्मा के मुख से निकला सौभाग्यवती भव। तो स्त्री कहने लगी मेरा सौभाग्य तो अर्थी के ऊपर जा रहा है, अभी कैसा मेरा क्या सौभाग्य होगा, तो ये ऑलरेडी उसको तो मृत्यु हो गई है, उठा के जा रहे हैं शमशान भूमि में, तो शमशान में नीचे रखे लकड़ी लाने लगे तो वो उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गया तो बड़ा सबको आश्चर्य लगा। स्त्री ने कहा कि ये महाराज ने कहा था सौभाग्यवती भव, ये उसकी आशीर्वाद से, तो जब उसको पता लगा कि मैं तो मर ही चुका था, ये महात्मा ने भगवान को प्रणाम करने से मेरा जीवन हुआ, बोला अब ये जीवन भगवान के हवा, तो फिर वो बड़ा बहुत बड़ा भक्त मना त्रिलोचन जाके भगवान की भक्ति करने लगे। तो केवल प्रणाम करने से भगवान के, जब सामान्य संत महात्मा ऐसी आशीर्वाद दे सकते हैं, तो भगवान के सामने प्रणाम करने से, ये सबसे बड़ा दुख तो ये है स्त्री का कि पति का देहांत हो गया और प्रणाम किया और वो शमशान में उठ के बैठ गया, जीवित हो गया, ये सब संभव है, ये सब ये कथाएं इसलिए कहते हैं कि प्रणाम अपने आप में हमारे दुख को निवृत्ति करता है, लेकिन हमको पता नहीं लगता है कब होता है कैसे होता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करना ये एक जीवन का नियम बनाना चाहिए। केवल जगाई और मधाई, ये जो भी स्नान करने आता था गंगा उधर बैठते उनको प्रणाम करते थे, उनमें उन्होंने केवल प्रणाम का ही काम किया, और उस प्रणाम से वो महाप्रभु के महान भक्त हो गए। वो घाट का नाम ही जगाई माधाई घाट है, जो भी स्नान करने आए उसको प्रणाम। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साक्षात शिष्य उधर रहे, वो 1000 प्रणाम रोज वैष्णव को करते थे। 1000 प्रणाम वैष्णव को रोज करते थे। तो प्रणाम की महिमा, हमारी परंपरा में प्रणाम की बहुत महिमा है कि प्रणाम करना चाहिए। भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं। तो जितना भगवान के सामने झुका जाएगा उतना अंदर में निम्रता आएगी और दुख का समनम होगा। इसलिए जहाँ भागवत पूरी होती है नाम संकीर्तन और चेतन महाप्रभु को चेतन चैतन्यमृत नाम संकीर्तन से शुरू होती है। तो इसलिए चेतना चैतन्यमृत को कलयुग में क्या विशेष रूप से हमारे परंपरा के अंतर्गत भागवत के बाद भी डीलिट, ये पोस्ट ग्रेजुएट तो वो डॉक्टरेट है, क्योंकि गीता के अंदर तो है जो भगवान बोलते हैं वो तो कोई भी सुन सकता है। भागवत के अंदर है जो भगवान करते हैं, वो तो घर में जाएंगे तब देखेंगे क्या करते हैं। नारद जी भगवान के घर में जाके गए तब देखा कि क्या कर रहे हैं रोज। लेकिन चेतना चैतन्यमृत में है कि भगवान क्या सोचते हैं। तो आप घर में जाओगे तो भी ये नहीं देख सकते कि कोई आदमी सोचता क्या है। तो चेतन महाप्रभु तो ये सोचते हैं कि राजा रानी मुझे क्यों प्रेम करती है, मैं कितना सुंदर हूँ, उसको क्या सुख मिलता है। तो भगवान क्या सोचते हैं ये चेतन चैतन्यमृत में क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता है, वो तो कोई आदमी सुन सकता है, कोई आदमी कहता है, लेकिन करता है तो घर में जाएंगे तब देखेंगे। तो भागवत भगवान का घर है, जैसे रामायण राम का घर है, ऐसे भागवत श्री कृष्ण का घर है। और अलग अलग स्कंदों में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का दर्शन है कि यह सब भगवान श्री कृष्ण के 9 स्कंदों में केवल भगवान के अवतारों का वर्णन है। वो भगवान क्या है जब पता लगेगा तब 10 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण वर्णन है। तो हर एक जिसे इनका उदाहरण है अपने घर में जितना हो सके रोज का 2-4-5 पेज जितना भी पढ़ा जा सके उतना पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो जीवन में जितना जल्दी हो सके इसको पूर्ण करने का भी प्रयास करना चाहिए। 335 अध्याय है, कोई एक अध्याय रोज पढ़े तो 1 साल में पूरा होगा। संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ने आता है तो कोई नहीं, ट्रांसलेशन से काम चल जाए। पर वो संस्कृत श्लोक प्रवचन के लिए जो बोल के बोलना ठीक है तो वो वैसे पढ़ सकते थे। ट्रांसलेशन से काम स्वरूप जो अगर संस्कृत पढ़ी हो तो वही पढ़ सकता है। हरेक उसके अंदर प्रयास करेगा तो ज्यादा गलतियां ज्यादा होगी, सीधा ठीक कम पढ़ा जाएगा। तो अर्थ समझ में आए वो काम करना चाहिए। तो अर्थ तो अनुवाद में है तो उसे जितना हो सके, जैसे प्रभुपाद ने तो और सरल कर दिया, कृष्ण बुक को 1 अध्याय रोज पढ़ो, वो तो 3 महीने में पूरा हो जाएगा। 1 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो 3 महीने में हो जाएगा, साल में 4 बार हो जाएगा 10 स्कंद इसका मतलब। लेकिन कुछ थोड़ा सा रोज पढ़ने का नियम बना लें, पढ़ा के बोले आपके पास थोड़ा समय है घर में तो इसका नियम से पढ़ सकती हैं। और उसका अच्छे से अच्छा काम ये है, आप जब पढ़ लें तो जब बच्चे आ जाएं और पति काम से आ जाए तो उसको बता दो कि आज हमने ये पढ़ा, तो आपको पक्का हो जाएगा। पढ़ के रख मत लो, पढ़ने के बाद बच्चों को बताओ कि आज ये कथा पढ़ी मैंने। तो उसमें से 2 काम होंगे, एक तो आपको याद रहेगा और दूसरा आप बंध जाएंगे, क्योंकि आप कथा करेंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ठीक तरह से व्यवहार करो, तो आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप उसमें कहो कि लिखा था आज के इस तरीके से माता कुंती प्रार्थना करती, दुखाने के ऊपर रोती नहीं थी और आपको दुखाया, रोई तो कहेंगे आपने तो बताया था, आप चुप करो। तो असल में प्रीचिंग का मतलब है आपको एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा, तो इसमें डबल फायदा है। और घर के अंदर एग्जाम्पलरी बनना बहुत मुश्किल है, बाहर बन जाते हैं। बाहर बहुत इजी है एग्जाम्पलरी बनना, घर में एग्जाम्पलरी बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए घर में कथा बताओगे तब अपने आप घर वाले आपको सीधा सा ठीक ठाक एग्जाम्पलरी बना देंगे थोड़ी समय में, नो प्रॉब्लम है। तो पढ़ने के बाद सुनाने का काम, और कभी कभी तो कहेंगे आप बंद करो तुम्हारी कथा है, बोला मैं तो बंद करूं लेकिन मैं पढ़ा है कहाँ ना, मैं कोई तो सुनने वाला होना चाहिए। तो इसका फायदा असल में डबल एडवांटेज जब होगा, पढ़े सुनाए। और उससे भी ज्यादा जिसके पास थोड़ा सा मतलब अभी समय भी है तो कलम उठा के लिख दो कि आज मैंने पढ़ा उसमें मेरे को क्या जचता है जो मैं जीवन में उतार सकता हूँ। तो इसको फिर अनुभव कहते हैं। वो आपकी कॉपी में लिखा होगा तो कभी भी आप खोल के पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये मैंने अनुभव मेरा भागवत में यहाँ देखा था। तो कोई अगर लिख दे तो वो फिर और भी परफेक्शन है। और ऐसे अगर आप लिखते जाएं तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो छोटा किताब अपना आप छप जाएगा भागवत का मेरा। इसको पुराने जमाने में हम पढ़ते थे तो कहते हैं अच्छा स्टूडेंट उसको कहते हैं जब उसका कोर्स फिनिश हो जाए तो वो अपना एक किताब लिखे। गुड स्टूडेंट इज वन हु हैज एट द कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स मस्ट रिटन हिज ओन बुक। तो अपने अनुभव से एक चीज आप लिखते जाएंगे तो एक छोटा सा कॉपी बन जाएगी आपके अनुभव की। और ऐसे हर एक का अलग अनुभव हो सकता है। एक ही श्लोक के एक ही पर्पज में से 10 आदमी 10 आइडिया निकाल सकता है तो और विस्तार हो जाएगा इसका। तो पढ़ें तो उसके साथ थोड़ा सा बोलें और कुछ हो सके तो लिखें। हरे कृष्ण धन्यवाद। बिंदु आगे हमने कथा समाप्त कर दी। हरे कृष्ण।
आपने पांच बताए थे
जो है
पांच गीत
हैं
उसमें।